नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयारियां हो रही है। अर्जुन घोड़ा लेकर के गए। उन्होंने अपने ही पुत्र से पराजय प्राप्त की और फिर अपनी पत्नी से उसको वापस जीवन भी मिला। फिर उसके बाद और भी कई देशों में गए, गंधार देश में भी गए। शकुनी का बेटा सामने आया, अर्जुन ने समझाया, लेकिन वो माना नहीं। जिस प्रकार जयद्रथ का सिर उड़ाया था, उसी प्रकार वो बाण तो छोड़ा लेकिन वो शिरस्त्राण को काट गिराया। तो गांधार लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि चाहते तो हमारे राजा को, शकुनी के बेटा को ही मार देते, पर मारा नहीं। शकुनी का पुत्र भाग गया रण से। तब उसकी मां आई, शकुनी की पत्नी, बूढ़े बूढ़े मंत्रियों को साथ में लिया, अपने बेटे को साथ में लिया और आकर के उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारे मन में कोई हम लोगों के प्रति बैर तो नहीं है ना? अर्जुन ने कहा, नहीं, कोई बैर नहीं है। बैर होता तो मैं इसका सिर ही उड़ा देता। तब उसकी मां बड़ी प्रसन्न होकर अपने बेटे को कहने लगी, बेटा ऐसे अर्जुन से तो सीखना चाहिए, लड़ते क्यों हो तुम? तो कहा, अच्छी बात है। वो गया, अर्जुन के पैरों में पड़ा और फिर कह दिया, मेरे मन में थोड़ी खुंदक थी कि आप पांडवों ने मेरे पिता के साथ में दुश्मनी रखी। अर्जुन ने कहा कि दुश्मनी हमने नहीं रखी, तुम्हारे पिता ने रखी। पासों में हमारे साथ अन्याय किया, फिर भी मैंने शकुनी को जान करके नहीं मारा। मां ने कहा, अब हो गया सो तो हो गया, अब आपस में कभी युद्ध मत करना। अर्जुन ने कहा कि तुम बड़े प्रेम से चैत सुदी पूनम को यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में आओ। पुत्र ने कहा कि आप तो मुझसे प्रसन्न हो गए, लेकिन आपके चार भाई और है ना? कह, नहीं, कोई आपसे अप्रसन्न नहीं है, बड़े प्रेम से आओ और बीती बात को भुला दो। उसके बाद अर्जुन हस्तिनापुर आ गए। यहां तक कथा हो गई थी। इधर युधिष्ठिर को बराबर जासूसों से खबर मिलती रहती थी, अर्जुन अब कहां है, किसके साथ युद्ध हुआ है, क्या हुआ है। जासूसों से पता चला कि अर्जुन लौट रहे हैं और गांधार तथा दूसरे देशों में उन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस दिन आए उस दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी, बारस, उत्तम नक्षत्र का योग था। युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम, नकुल, सहदेव को बुलाया। और भीमसेन से कहा, भीमसेन तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन घोड़े के साथ आ रहा है, इधर यज्ञ का आरंभ करने का भी समय पास में है, आज द्वादशी हो गई, माघ की पूर्णिमा के बाद केवल एक फाल्गुन की पूर्णिमा बाकी है, इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाओ और कहो कि यहां अश्वमेध यज्ञ कहां करोगे वो जगह देखो। भीमसेन ने राजाज्ञा का पालन किया, अर्जुन के लौटने का समाचार सुनकर चित्त प्रसन्न हुआ। भीमसेन यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके होशियार कारीगरों के साथ नगर से बाहर आए और साल वृक्ष से भरे हुए सुंदर स्थान पसंद करके चारों ओर से नाप लिया। तत्पश्चात उत्तम मार्गों से सुशोभित एक बड़ी सुंदर यज्ञ भूमि तैयार कराई। उस भूमि में रहने के लिए सैकड़ों महल बनाए, जिनके फर्श में अच्छे अच्छे रत्न जड़े हुए। यज्ञशाला सोने और रत्नों से सजाई हुई थी, सोने के खंभे, बड़े बड़े तोरण। धर्मात्मा भीम ने यज्ञ मंडप के सभी स्थानों में शुद्ध सोने का उपयोग किया था। देखो ये सब कथा कहां जाकर टिकेगी, इसलिए यहां पर खूब बता रहे हो। ये सारी कथा टिकेगी एक नेवले पर जाकर, उसके लिए बता रहे हैं। इतने शुद्ध सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए, बाहर से आए हुए राजाओं के लिए, उनकी स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रहने के स्थान बनाए, ब्राह्मणों के लिए अच्छे स्थान बनाए, सब निर्माण शास्त्रीय विधि के अनुसार हुआ। ये सब काम हो गया तो भीमसेन ने युधिष्ठिर की आज्ञा से सब राजाओं के यहां निमंत्रण और दूत भी भेज दिए। निमंत्रण पाकर सभी राजा लोग स्त्रियां, घोड़े, रथ, हाथी आदि के साथ वहां उपस्थित होने लगे। युधिष्ठिर ने सबके लिए खाने पीने रहने की अलौकिक व्यवस्था की थी। चावल, शक्कर, घी और तरह तरह का गौरस भांति भांति के भवनों में स्थापित कर दी थी। पैदल आने वालों के लिए दूर दूर तक सवारियां भेज दी थी। युधिष्ठिर के इस यज्ञ में बहुत से ब्रह्मवादी भी आए, अच्छे अच्छे ब्राह्मण आए, अपने शिष्यों के साथ आए। महातेजस्वी युधिष्ठिर दंभ छोड़कर स्वयं इन सबका विधिवत सत्कार करने आगे गए। जब तक उनका योग्य स्थान का प्रबंध न हो जाता तब तक उनके साथ रहे। कारीगरों ने आकर युधिष्ठिर को सूचना दी कि यज्ञ मंडप का सारा कार्य हो चुका है। युधिष्ठिर महाराज भाइयों सहित बड़े प्रसन्न हो गए। तदनंतर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए राजा लोग घूम घूम कर इस यज्ञ मंडप की सजावट को देखने लगे। सोने के तोरण, शैया, आसन, विहार और रत्नों के ढेर, घड़े, बर्तन, कड़ाहें, कलश, बहुत बहुत से कटोरे, एक भी ऐसा पदार्थ नहीं था, सामान नहीं था जो सोने का न हो। कहीं लोहा, पीतल, दूसरी धातु दिखाई नहीं देती थी। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जो लकड़ी के यूप बने हुए थे उनके ऊपर भी सोना जड़ा हुआ था। वह यज्ञशाला पशु, गौ धन और धान्य सभी दृष्टि से संपन्न और आनंद बढ़ाने वाली थी। उसे देखकर राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणों और वेश्यों के लिए वहां परम स्वादिष्ट अन्न का भंडार भरा हुआ। प्रतिदिन 100,000 ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर बार बार डंका पीटा जाता था। देखो इन बातों को सुनने में आनंद आता है। बार बार डंका पीटा जाता था आओ, जो भोजन करना चाहे आ जाओ आ जाओ। धर्मराज का यज्ञ रोज रोज इसी प्रकार चालू रहा। अन्न का इतना बड़ा ढेर मानो कोई पर्वत है, दही इतना दही मानो नहरें बह रही हों, घी इतना कि तालाब भर गए। उस महान यज्ञ में अनेकों देशों के लोग जुटे हुए थे, सारा जम्बूद्वीप वहां एकत्रित था। हजारों प्रकार की जातियां बहुत से पात्र लेकर वहां उपस्थित हुई, सैकड़ों और हजारों पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ परोसते थे। वहां ब्राह्मणों को खूब अच्छा भोजन दिया गया, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं को दिया जाता है। युधिष्ठिर ने अपने यहां उपस्थित राजाओं को देखकर भीमसेन से कहा, भीमसेन, यहां जो जो राजा पधारे हुए हैं सभी अत्यंत श्रेष्ठ और पूजा के योग्य हैं, तुम इनका सत्कार करो। भीमसेन नकुल और सहदेव को साथ में लेकर यज्ञ में आए हुए राजाओं का खूब सत्कार करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी को आगे करके सात्यकी, प्रद्युम्न, गद, निषट, सांब, कृतवर्मा आदि वृष्णि वंशियों के साथ युधिष्ठिर के पास आए भगवान कृष्ण। भीमसेन ने सभी का स्वागत किया, सत्कार किया, वहीं थे यज्ञ भूमि में सत्कार किया। फिर वे रत्नों से भरे हुए घरों में जाकर रहने लगे। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक कुछ गुप्त बात करने लगे। अंत में बोले, राजन, मेरे पास द्वारिका का रहने वाला एक विश्वास पात्र मनुष्य आया है। उसने अर्जुन को अपनी आंखों से देखा था। वे अनेकों स्थान पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। उसने यह भी बताया है कि महाबाहु अर्जुन अब निकट आ पहुंचे हैं, इसलिए अब आप अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक कार्य का शुभारंभ कर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, देखो अभी अर्जुन तो यूं आ रहे थे, इधर ये तैयारियां हो रही थी, इसलिए बात कही है। माधव, बड़ी सौभाग्य की बात है, अर्जुन कुशलपूर्वक लौट रहे हैं। उन्होंने जो संदेशा दिया हो उसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, महाराज, मेरे पास जो मनुष्य आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, आप समय देखकर मेरा ये कथन महाराज युधिष्ठिर को भी सुना दीजिएगा। अर्जुन का समाचार है जो मेरे पास आया। अश्वमेध यज्ञ में प्राय सभी राजा आएंगे, जो लोग आ जाए उन सब का पूर्ण सत्कार होना चाहिए, यही हमारी योग्य काम है। राजसु यज्ञ में अर्घ्य देने के समय जो दुर्घटना हो गई थी वैसी इस बार नहीं होनी चाहिए। क्या हुई थी? शिशुपाल का वध हुआ था। राजा युधिष्ठिर और आप दोनों सलाह करके ऐसा उपाय करना, बहुत से राजा लोग आएंगे, कई राजाओं के मन में द्वेष की भावना भी होगी, कई हमारे यज्ञ में बिगाड़ने वाले भी आएंगे, कई हमारा तमाशा देखने के भी आएंगे। बहुत धीरता से काम लेना है, पारस्परिक द्वेषवश पुनः प्रजाओं का संहार न हो, इस बात का ध्यान रखना है। उस मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई बात और भी बताई, उसको भी सुन लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा है कि इस यज्ञ में मणिपुर का राजा बब्रुवान, जो महान तेजस्वी और मेरा प्रिय पुत्र है, मेरे प्रति बड़ी भक्ति और अनुरक्ति है, उसके आने पर आप मेरी अपेक्षा उसका ज्यादा सत्कार करना। आपके पास ये संदेश भी पहुंचेगा कि बब्रुवान ने अर्जुन को मार दिया था, परंतु मेरी पत्नी उलूपी ने मुझे वापस जीवित भी करवा दिया। इन सब बातों से आपके मन में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, मेरे पुत्र का स्वागत होना चाहिए। अर्जुन का संदेश सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अभिनंदन करते हुए कहा, कृष्ण क्या प्रिय समाचार सुनाया है, कितनी ऊंची अर्जुन की भावना है, और वो अर्जुन का संदेश फिर आपके मुख से अमृतमय वचनों को सुनकर के मेरे मन को बड़ा आनंद मिला है। मेरे सुनने में आया कि भिन्न भिन्न देशों में वहां के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े, इसका क्या कारण है? मैं एकांत में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूं तो ये जान पड़ता है कि वे सबसे अधिक दुख के भागी हैं। उनका शरीर तो शुभ लक्षणों से संपन्न है, फिर भी उनमें कौन सा ऐसा अशुभ है जिस कारण अर्जुन को ही हमारे में सबसे ज्यादा कष्ट। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान कृष्ण कई देर तक सोचे और उत्तर दिया कि राजन, अर्जुन की फिल्लियां औसत से कुछ अधिक मोटी है। फिल्ली क्या हुआ है पता नहीं, फिल्ली कि नाक ये है कि क्या है, बस ये एक अशुभ लक्षण शरीर में दिखाई देता है और कोई नहीं। फिल्लियों के मोटे होने से ही उन्हें सदा रस्तों पर ही चलना पड़ता है और कोई कारण नहीं। अर्जुन के संबंध में ये बातें सुनकर भीमसेन बड़े खुश हो रहे थे, भाई भी खुश हो रहे थे, और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हो रहे थे। इन लोगों ने अभी अर्जुन विषय बातचीत हो रही थी तो इतने में ही अर्जुन का एक भेजा हुआ दूत भी आ गया। बड़ा बुद्धिमान था अर्जुन के युधिष्ठिर के पास आकर अर्जुन के उस दूत ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और अर्जुन के आने का समाचार सुनाया। युधिष्ठिर की आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। ये प्रिय वृत्तांत निवेदन करने के लिए दूत को पुरस्कार के रूप में बहुत सा धन दिया। दूसरे दिन सवेरे अर्जुन आए, चारों ओर चर्चा हो रही है, नगर में कोलाहल हो रहा है, यज्ञ संबंधी घोड़े की टाप से धूल उड़ने लगी और उसके बीच में चलता हुआ अश्व उच्च श्रभा के समान शोभा देने लगा। क्या उसकी ऊंची पीठ थी। उस समय लोगों के मुख से निकली हुई आनंददायिनी बातें सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो रहे थे। लोग कह रहे थे, पार्थ बड़ी सौभाग्य की बात है, तुम घोड़े सहित कुशल पूर्वक लौट आए, तुम्हारे जैसे भाई को पाकर हमारे महाराज युधिष्ठिर बड़े धन्य हैं, हम लोग भी बड़े धन्य हैं, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो सारी पृथ्वी पर घोड़े को घुमाकर भूमंडल के समस्त राजाओं पर विजय पा जाए और कुशल पूर्वक लौट आए। अतीत के युग में जो सागर आदि महात्मा राजा हो चुके, उन्होंने भी कभी ऐसा पुरुषार्थ किया होगा या नहीं, हमारे ध्यान में नहीं आता, जो तुमने करके दिखाया है। अर्जुन ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। धर्मात्मा अर्जुन यज्ञशाला की ओर चले। मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर और यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को आगे करके अर्जुन की अगवानी की। निकट आने पर अर्जुन ने अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र और धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। फिर भीमसेन आदि का विशेष सत्कार करके श्री कृष्ण को गले लगाया। उन सब ने एकत्रित होकर अर्जुन का सत्कार किया। अर्जुन ने भी सबका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात वे विश्राम करने लगे। इसी समय अपनी दोनों माताओं के साथ राजा बब्रुवान भी वहां पहुंच गया। वह कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्यान्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करने के बाद अपने सभी परिवार के बड़े सदस्यों को प्रणाम करने के बाद सभी का सत्कार प्राप्त कर बड़ा प्रसन्न हुआ। सब ने उसको छाती से लगाया और विशेषकर वो अपनी दादी कुंती के महल में गया। बब्रुवान और उनके चरणों में लोटपोट हो गया। बूढ़ी दादी ने पूछा, बेटा मैं पहचान ही नहीं, कौन हो तुम? उसने उत्तर दिया, मैं अर्जुन पुत्र बब्रुवान हूं। उसके बाद बब्रुवान के साथ चित्रांगदा और उलूपी, इन दोनों ने भी माता कुंती को, माता द्रौपदी को चरण छू के प्रणाम किए। फिर सुभद्रा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों से भी यथा योग्य मिली। कुंती ने उनको बब्रुवान की मां समझ करके अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। सुभद्रा और द्रौपदी ने तथा अन्य स्त्रियों ने भी अपनी ओर से बब्रुवान का बहुत प्यार किया, स्नेह किया और उनके दोनों माताओं को अनेक प्रकार के उपहार दिए। वे दोनों देवियां बहुमूल्य शैयाओं पर विराजमान हो गई। कुंती का जी नहीं भरा। मां तेजस्वी बब्रुवान ने भी कुंती से खूब बातें की। कुंती ने बब्रुवान को ऐसा छाती से लगाया, उसको छोड़ा ही नहीं। इतनी कुंती को प्रसन्नता हुई। फिर महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुआ। बड़े नम्रता के साथ धृतराष्ट्र के चरणों का स्पर्श किया। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव सभी के चरणों में बब्रुवान ने विनय पूर्वक अभिवादन किया और सभी ने उसे अपने छाती से लगाया। इस प्रकार वह प्रद्युम्न के भांति विनीत भाव से शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण की सेवा उपस्थित हुआ। कई देर तक कृष्ण को निहारता रहा। उसको कुरुक्षेत्र की युद्ध की सब बातें मालूम थी। कृष्ण का कितना उपकार, मेरे पिता के साथ कृष्ण का कितना सख्य भाव। कृष्ण को देखकर झर झर रोने लग गया स्नेह में और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसके मन में तरह तरह के भाव आए कि आज अर्जुन का पुत्र होने का मुझे गौरव मिला कि कृष्ण के चरणों में जहां बड़े बड़े योगी लोगों को स्थान नहीं मिलता, मुझे उनके चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला। कृष्ण उनको बार बार उठाते हैं पर बड़े गदगद भाव से प्रणाम करता उठा नहीं जाता है। भगवान ने उसको बड़े प्यार से उठा करके कहा, बब्रुवान हम ये रथ तुमको देते हैं। क्या इतना सुंदर सजाया हुआ रथ, जिस रथ को सब लोग वहां बड़े आश्चर्य से देखते थे, बड़े उत्तम घोड़े वो भगवान ने बब्रुवान को दिया। उसके बाद तो युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने अलग अलग प्रकार के बब्रुवान को धन दिया। यज्ञ का तीसरा दिन था। सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर के पास आकर बोले, कुंती नंदन तुम आज से यज्ञ प्रारंभ करो, उसका समय आ गया है, यज्ञ का शुभ मुहूर्त उपस्थित है, याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं है, किसी भी अंग से हीन नहीं होगा, इसलिए अहीन कहलाएगा, सर्वांग पूर्ण ये यज्ञ कहलाएगा। इसमें सुवर्ण द्रव्य की अधिकता है, अतः ये बहु सुवर्णक यज्ञ कहलाएगा। महाराज, यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मण ही है, इसलिए तुम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना, ऐसा करके तुम तीन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करोगे। तुम्हारे अंदर जो ज्ञातिवध के पाप की ग्लानि हो रही है उससे मुक्त हो जाओगे। इस यज्ञ के अंत में तुम्हें अवृत स्नान करने का अवसर मिलेगा, वह परम पवित्र और पावन करने वाला है। महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उसी दिन दीक्षा ग्रहण की और बहुत से अन्न की दक्षिणाओं से युक्त तथा संपूर्ण कामना और गुणों से संपन्न उस महान यज्ञ का शुभारंभ किया। वेदों की ज्ञाता और संपूर्ण विधियों को जानने वाले याजकों ने सब कर्म करवाए, किसी प्रकार की यज्ञ में भूल नहीं रही, कोई किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता था। सोमपान करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सोमलता का रस निकालकर क्रमशः प्रातः सवन आदि कर्मों का अनुष्ठान किया। यज्ञ में आया हुआ कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, भूखा, दुखिया नहीं रह गया था। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने भोजनार्थियों के भोजन देने पर, भोजन के काम पर सदा डटे रहते थे। यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण याजकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कार्य प्रारंभ करते थे। उस यज्ञ के सदस्यों में कोई भी ऐसा नहीं जो छह अंगों का विद्वान न हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला न हो, अध्यापन कार्य में कुशल न हो, या वाद विवाद या शास्त्रार्थ में प्रवीण न हो, बड़े कुशल थे। तत्पश्चात यूप की स्थापना का समय आया तो याजकों ने यज्ञ भूमि में बेल के छह, खैर के छह, पलाश के छह, देवदारू के दो और लसोड़े का एक एक यूप, इस प्रकार 21 यूप खड़े किए। इसके सिवा धर्मराज की आज्ञा से भीमसेन ने यज्ञ की शोभा के लिए एक बहुत ही ऊंचा यूप खड़ा किया। यज्ञ की वेदी बनाने के लिए मिट्टी की ईंटें नहीं थी, सोने की ईंटें तैयार कराई। उनके द्वारा जब वेदी बनाकर तैयार हुई तो दक्ष प्रजापति की यज्ञ वेदी के समान शोभा हो रही थी। उस यज्ञ मंडप में अग्नि चयन के लिए 4 स्थान बनाए, उन सब की ऊंचाई 18 हाथ की थी। उनका आकार गरुड़ के समान था जिसमें सोने के पंख लगे हुए। उन वेदियों पर त्रिकोण कुंड बनाए हुए, उनमें अग्नि स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। किम पुरुष और किन्नरगण यज्ञशाला की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणों का निवास था। व्यास जी के शिष्य जो संपूर्ण शास्त्रों के प्रणेता और यज्ञ में कुशल थे उस यज्ञ में शामिल थे। देवर्षि नारद, तुम्बरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा गान विद्या में प्रवीण दूसरे गंधर्व भी वहां मौजूद थे जो नाचने गाने में बड़े प्रवीण थे। गंधर्व लोग प्रतिदिन यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद अपनी कला के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरंजन करते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। तत्पश्चात व्यास जी ने उनके अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। फिर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक 1000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान में दे दी। 1000 करोड़ का अर्थ 1 खरब। सत्यवती नंदन व्यास जी ने उस दान को स्वीकार किया और महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को अब तुम्हारे अधिकार में छोड़ता हूं, तुम मुझे इसकी कीमत दे दो, क्योंकि ब्राह्मण राज्य के इच्छुक नहीं होते, ब्राह्मणों को तो धन की इच्छा होती है। साफ लिखा है भाई, ब्राह्मणों को नाराज मत होना। तत्पश्चात महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा, अश्वमेध यज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है, अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई सारी पृथ्वी मैंने ऋतुजों को दे दी है, अब मैं वन में चला जाऊंगा, आप लोग चातुर हो त्रिविधि के अनुसार इसमें 4 भागों में बांट दीजिए। मैं ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेना चाहता, मेरे भाइयों का विचार भी ऐसा ही रहता है। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा, हाँ महाराज, हम ब्राह्मणों का धन नहीं ले सकते। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आकाशवाणी ने कहा, पांडवों तुम धन्य हो, व्यास जी तुमको पृथ्वी दे रहे थे, तुमने नहीं लिया। समस्त ब्राह्मण उनकी सराहना करने लगे। तब व्यास ने ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो ये पृथ्वी मुझे दे दी है ना, अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूं और इसके बदले में ब्राह्मणों को सोना दे दो और पृथ्वी को अपने पास रहने दो। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, क्या हो रहा है? वेदव्यास जी की बातों को समझो। इतनी देर तक भगवान चुप थे, ये देखा ये चले जाएंगे जंगल में, क्या हो रहा है? व्यास जी की बात समझो, जो व्यास जी आज्ञा दें उसके अनुसार काम करो, अपनी तरफ से नया विचार मत लगाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? सोना दे दो, जो व्यास जी कहते हैं वो दे दो। तब युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 1-1 करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी। महाराज मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा त्याग किया था वैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। महर्षि व्यास ने वो स्वर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने 4 भाग करके आपस में बांट लिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में 1 सुवर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और उनके सारे पाप धुल गए, उनके स्वर्ग पर जाने का अधिकार हो गया। ऋतिजों ने अपनी मिली हुई अनंत स्वर्ण की ढेरी को बड़े आनंद और उत्साह के साथ एक दूसरे ब्राह्मणों में बांट दिया। यज्ञशाला में जो भी कुछ स्वर्ण या सोने के आभूषण, तोरण, यूप, घड़े, बर्तन, ईंट, उनको भी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों ने बांट लिया। ब्राह्मणों के बाद वहां पर बहुत सा धन पड़ा रहा। उसे क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, शूद्रों ने, म्लेच्छ जातियों ने उठाना प्रारंभ किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को धन से खूब तृप्त कर दिया और सब बड़े प्रसन्न होकर अपने घर गए। उस महती स्वर्ण राशि में से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया। ससुर के द्वारा स्नेह पूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी संकुचित भी हुई और कहने लगी, ये आपने मुझे स्वर्ण कैसे दिया है। व्यास जी ने कहा, संपूर्ण कुरुकुल के अंदर सबका गौरव बढ़ाने के कारण मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ये आपको दे रहा हूं। कोई भी ससुर अपने बहू रानी को प्रेम से कुछ दे सकता है, उसके लिए बहू रानी को मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ससुर का अपमान होगा। तुम इसे स्वीकार करो और तुम्हारे मन में आए वैसे पुण्य के काम करो। पांचों भाई देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगे, लेकिन महाराज वेदव्यास जी के सामने कुछ नहीं बोल सके। यज्ञ के अंत में अवृत स्नान किया, भाइयों के साथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे युधिष्ठिर जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। यज्ञ में आए हुए राजाओं को तरह तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, स्त्रियां, वस्त्र और सुवर्ण भेंट किए गए। और फिर राजा बब्रुवान को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। उसके बाद अपनी बहन दुशला जो जरासंध को ब्याही थी, जरासंध नहीं, जयद्रथ को ब्याही थी, उसको अपने पास बुलाकर बड़ी प्रसन्नता से युधिष्ठिर ने बहुत सा धन दिया और कहा, बहन तुम अत्यंत प्रसन्नता के साथ इसे स्वीकार करो। और कह दिया कि आपके पौत्र को हम सिंधु देश का राजा मानकर उसको ये धन दे रहे हैं। कुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजाओं को प्रसन्न करके विदा किया। भगवान श्री कृष्ण, महाबली बलराम, प्रद्युम्न आदि हजारों वृष्णि वीरों के साथ पूजित होकर वे भी द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर का इस प्रकार ये यज्ञ पूरा हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ कैसा था कोई कह नहीं सकता है। उसमें अन्न, धन, रत्नों की ढेरियां थी। कई ऐसे तालाब बन गए जिनमें घी का कीचड़ जमा हो गया। अन्न के तो पहाड़, रसों की नदियां, जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु वहां मिल जाए। सबको इच्छा अनुसार भोजन कराया, घोषणा कर दी, दिन रात भोजन की पंक्तियां लगी रहती थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में धन को पानी के समान बहाया। सब प्रकार की कामनाओं, रत्नों, रसों की वर्षा की और सब प्रकार से पाप रहित होकर, कृतार्थ होकर अपने नगर में प्रवेश किया। यज्ञ हो गया, अब आगे सुनो। जन्मेजय ने कहा, हे वेशमपायन, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, मेरे प्रपितामह परदादा युधिष्ठिर के यज्ञ में जहां स्वयं भगवान विराजमान और जहां इतना स्वर्ण, इतना सब कुछ हुआ, बड़ी शांति के साथ हो गया, वहां कोई आश्चर्यजनक घटना घटी कि नहीं घटी। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मैं तुमको बताने ही वाला था, तुमने पूछ लिया। युधिष्ठिर का वह महान अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हुआ, उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना हुई, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्रेष्ठ जाति वालों, संबंधियों, बंधु बांधवों, अंधों तथा दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर युधिष्ठिर के महान दान का चारों ओर शोरगुल होने लगा। खूब प्रशंसा हो रही थी, उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग महाराज युधिष्ठिर की जय जयकार कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक नेवला आया, उसकी आंखें बड़ी नीली नीली थी और उसके शरीर के एक तरफ का भाग तो सोने का था, एक भाग उसका यूं ही था जो नेवलों का हुआ करता है। उसने आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर आवाज देकर सबको भयभीत कर दिया। पशु पक्षी सब स्तब्ध रह गए और वो जोर से मनुष्य की भाषा में कहने लगा, राजाओ तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक उंच वृत्तिधारी उदार ब्राह्मण के शेर भर सत्तु दान करने के बराबर नहीं हुआ है। नेवले की बात सुनकर खूब सा धन लदे लदे ब्राह्मण जा रहे थे, उनको आश्चर्य हुआ। नेवले को चारों तरफ से घेर लिया और पूछने लगे, इतना इतना सोना कभी उस ब्राह्मण ने दिया जो तुम यज्ञ बताते हो? इतिहास में सुना, हमसे चला नहीं जाए इतना सोना है, हमारे शरीर के वजन से ज्यादा सोना है। नकुल, इस यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है, तुम यहां नेवले कहां से आ गए? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा बल है? कितना तुम्हारे को शास्त्र ज्ञान है? तुम क्या जानो यज्ञ के बारे में? तुम किसके सहारे रहते हो? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा? तुम किस आधार पर हमारे यज्ञ की निंदा करते हो? हमने नाना प्रकार के यज्ञ सामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय विधि की अवहेलना न करते हुए यज्ञ को पूरा किया है। तुम नेवला क्या जानो? न तुम मंत्र जानो, न तुम विधि जानो। और आके कह दिया कि सत्तू भर जो के सत्तू भर आटे के दान के समान भी नहीं हुआ। कैसे बोल दिया? यहां कितने पूजनीय पुरुषों की पूजा की गई, अग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी गई, देने योग्य वस्तुओं का ईर्ष्या रहित होकर दान किया है। यहां नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को, उत्तम युद्ध के द्वारा क्षत्रियों को, श्राद्ध के द्वारा पितामहों को, पितरों को, रक्षा के द्वारा वैश्यों को, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करके उत्तम स्त्रियों को, दया से शूद्रों को, दान से बची हुई वस्तुएं अन्य पुरुषों को देकर कितना संतुष्ट किया है। महाराज युधिष्ठिर के बर्ताव से एक भी व्यक्ति असंतुष्ट होकर नहीं गया है। कैसे बोलते हो? इसी प्रकार पवित्र हवष्य के द्वारा देवताओं को और रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया गया है। ये सब होने पर तुमने ऐसा क्या देखा, तुमने ऐसा क्या सुना कि जिससे इस यज्ञ पर आक्षेप करते हो? इन ब्राह्मणों के निकट तुम सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातें थोड़ी विश्वास के योग्य भी जान पड़ती हैं। इतना बड़ा तुम साहस लेकर के बोलते हो तो कहीं न कहीं कोई बात है। बताओ, तुम स्वयं भी कुछ बुद्धिमान मालूम देते हो। अरे, तुम नेवला बने हुए कोई दिव्य प्राणी तो नहीं हो? केवल ये रूप बना के आए हो? कौन हो तुम? परिचय दो, सत्य बोलना। ये सत्यात्मा युधिष्ठिर का यज्ञ है, इस समय तुम्हारे ब्राह्मणों के साथ समागम हुआ है, हमने सत्य का आश्रय लिया है, इसलिए हमारे सामने सत्य बात बोलना कि तुम कौन हो, कैसे जानते हो? ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता से निर्भय होकर उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, मैंने अपनी जबान से आपको झूठा मिथ्या या घमंड में आकर कोई बात नहीं कही, मैंने अज्ञान में कोई बात नहीं कही, मैंने जो कुछ कहा है मेरी दृष्टि में मैंने सत्य कहा है। आप लोगों का ये यज्ञ, अभी भी कहता हूं, आप लोगों का ये यज्ञ उंच वृत्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा किए हुए शेर भर सत्तुदान के समान भी नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा कि यही तो हम पूछना चाहते हैं। नेवले ने कहा, आप अपने अंदर का लोभ, दुराग्रह, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुनिए। कुरुक्षेत्र में एक उंच वृत्तिधारी दानी ब्राह्मण रहते हैं। उंच वृत्ति होती है खेत में से अनाज ले जाए फिर वह यूं ही पड़े रहता है ना, उसको चुग चुग करके जो ब्राह्मण निर्वाह करते हैं वह उंच वृत्ति वाला होता है। वह उंच वृत्ति वाले दानी ब्राह्मण के संबंध में मैंने आपको जो कुछ देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया, वह यज्ञ संसार में कौन कर सकता है। ब्राह्मणों ने कहा, नेवले तुम और हम एक ही उम्र में हैं, इसी काल में जी रहे हैं, यज्ञ कराने का काम तो हम लोगों का है, हमारे जितने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण सब यहां आए हुए हैं, कोई भी इस बात को नहीं जानता कि उसने कोई यज्ञ किया था। एक उंच वृत्ति वाला ब्राह्मण उदर पूर्ति नहीं कर सकता, वो ऐसा यज्ञ और इतना उत्तम यज्ञ कर ले, हम समझे नहीं। तुम हमको अच्छे ढंग से समझाओ। नेवले ने उत्तर दिया कि मैं अपने अनुभव से जो एक अद्भुत काम देखा हूं वो बता रहा हूं। उस ब्राह्मण के द्वारा न्यायतः प्राप्त होने वाले थोड़े से अन्न का दान भी अत्यंत उत्तम फल का साधक हुआ। आप लोग शांति से सुनिए। कुछ दिन पहले की बात है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं, कई ब्राह्मण रहते थे, उनमें एक कोई ब्राह्मण रहता था, वे उंच वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे, कबूतर के समान अन्न का दाना चुन चुन कर लाते और उसी से कुटुंब का पालन करते थे। वे अपनी स्त्री पुत्र पुत्रवधू के साथ रहकर तपस्या में संलग्न रहते और मुश्किल से उनका पेट भरता था। ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार वाले बड़े धर्मात्मा जितेंद्रिय, वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री पुत्र आदि के साथ बैठकर भोजन करते थे। यदि किसी दिन भोजन नहीं मिला तो फिर दूसरे दिन उसी वेला में अन्न ग्रहण करते थे। हरदम अन्न के लिए तलाशी नहीं करते थे। एक बार कुरुक्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। उस समय ब्राह्मण के पास कोई अन्न तो था नहीं, खेतों का अन्न भी सूख गया, अतः उनके पास खाने पीने का कोई द्रव्य नहीं रहा, बिल्कुल अभाव हो गया। प्रतिदिन दिन का छठा भाग आकर बीत जाता परंतु वे भूखे रह जाते, उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था, सबके सब भूखे ही सोते और भूखे ही उठते थे। एक दिन जेठ की शुक्ल पक्ष में दोपहर के समय वे तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में निकले। घूमते घूमते भूख और परिश्रम से बड़े व्याकुल हो उठे, तो भी उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। और दिनों के भांति उस दिन भी उन्होंने अपने कुटुंब के साथ उपवास करके दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। इसी बीच एक दिन दिन के छठे भाग में उन्हें शेर भर जौ मिला। उस ब्राह्मण परिवार के सभी लोग बड़े तपस्वी थे। उन्होंने जौ का सत्तू तैयार किया और नैतिक नियम एवं जप का अनुष्ठान करके अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने के पश्चात वे थोड़ा थोड़ा सत्तू बांटकर भोजन के लिए बैठ गए। इतने में ही कोई अतिथि ब्राह्मण आया। अतिथि का दर्शन करके सबका हृदय हर्ष से खिल उठा। सारा परिवार अपने आसन से उठा और उस अतिथि ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। ब्राह्मण परिवार के सभी लोग विशुद्ध चित्त, जितेंद्रिय, श्रद्धालु, दोष दृष्टि से रहित, क्रोध को जीतने वाले सज्जन, ईर्ष्या भाव से रहित और धर्मज्ञ थे। उन्होंने अपने जीवन में से अभिमान, मद और क्रोध का तो त्याग ही कर दिया था। क्षुधा से कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देकर वे अपने कुटी में ले आए। वहां उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा, भगवान आपके लिए अर्घ्य, पाद्य और आसन मौजूद है। अर्घ्य माने जल वगैरह, पाद्य माने पैर वगैरह धुपाने की सामग्री और आसन माने बैठने के लिए, यह मौजूद है। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए परम पवित्र सत्तू से हम आपके सेवा में उपस्थित हैं। मैंने प्रसन्नता पूर्वक ये सत्तू आपको अर्पण किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर अतिथि ने सत्तू का एक भाग लिया और उसे खा लिया। उन शिवृत्ति वाले ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज और लीजिए। हां, भूख तो नहीं मिटी है, एक भाग और दे दीजिए। दूसरा भाग लिया। उन शिवृत्ति वाले ने फिर कहा कि भगवान यदि तृप्ति नहीं हुई है तो निसंकोच एक भाग और ले लीजिए। वो भाग भी ले लिया। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता अभी भी भूखे रह गए, उनके लिए आहार की चिंता करने लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हमारा हिस्सा दे दो। पुत्र ने कहा, सबका हिस्सा दे दिया, अब एक हिस्सा बाकी रहा। तो पत्नी ने कहा, पत्नी से कहा, कल्याणी अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी काम होता है, तुम्हें बहुत मुश्किल से ये एक भाग है। जो स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है वो पुरुष तो दया का पात्र है। पुरुष कमावे और स्त्री का पालन करे, पर स्त्री कमावे और पुरुष उससे पालित हो, उस पुरुष की सदा निंदा ही होती, दया का पात्र है। स्त्री कुल की गौरव होती है, तुम न होती तो हमारा वंश नष्ट हो जाता। पितृकारी स्वधर्म अनुष्ठान ये सब स्त्री के अधीन है। स्त्री का धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वह व्यक्ति संसार में महान अपयश का भागी होता है। लोक परलोक सब जगह उसकी निंदा होती है और अंत में उसको नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए तुम्हारा हिस्सा हम ब्राह्मण को कैसे दें? पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक हैं। पति और पत्नी दिखने में दो अलग होते हैं। जहां धर्म होगा वह पति और पत्नी मिलके एक होते हैं। आपको कुछ नहीं मिले और मैं ये सत्तू ले लूं कभी संभव नहीं है। आपने अपना तो धर्म देखा, मेरा भी तो धर्म देखिए। पति की प्रसन्नता, पति की तृप्ति ही पत्नी की तृप्ति होती है। यदि आप इस हिस्से पर मेरा अधिकार मानते तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अतिथि को दे दीजिए। स्त्रियों का सत्य, धर्म, रति, अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पति के अधीन होती है। स्त्री के लिए पति सबसे बड़ा देवता होता है। स्त्री की संतति पति का प्रसाद होता है। आप पालन करने के कारण मेरे पति, भरण पोषण करने से भरता और पुत्र प्रदान करने के कारण वरदाता है। इसलिए मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि देवता को अर्पण कीजिए। आप भी तो जरा जीर्ण वृद्ध क्षुधातुर अत्यंत दुर्बल उपवास से थके हुए और क्षीण काय हैं, फिर आप किस तरह भूख का कलेश सहन करते हैं? मैं भी कर लूंगी। पति से कुछ नहीं कहा गया है। वो सत्तू लिया और आगंतुक ब्राह्मण से निवेदन किया, हे ब्राह्मण वर, ये सत्तू एक हिस्सा और रह गया, आपकी तृप्ति नहीं हुई इसे स्वीकार कीजिए। वो अतिथि चौथा भी खा गए। संतोष नहीं हुआ। पुत्र ने कहा, पिताजी मेरा सत्तू ब्राह्मण को दीजिए, मैंने यत्नपूर्वक आपकी आज्ञा का पालन सदा किया, इतना निवेदन आप मानिए। पिता ने कहा, बेटा तुम तो हजार वर्ष के हो जाओ तो अभी मेरे लिए तो छोटे ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर उसे अपने को कृतकृत्य समझता है। बच्चों को भूख ज्यादा लगती है। पुत्र बोला, महाराज आप भूखे रहो, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से सभी ने अपना हिस्सा दिया। ससुर ने भी कहा अपनी पुत्र वधु से कि बेटा तुम पतिव्रता हो, उत्तम शील और सदाचार का पालन करने वाली हो, गुरुजनों की सेवा करती हो, सेवा करने वाले को भूखा नहीं रखना चाहिए। उसने कहा, मैं आपके देने पर मैं अपना भाग कैसे रख सकती हूं? वो हिस्सा भी दे दिया। सब हिस्सा लेने के बाद नवागंतुक ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पर दृष्टि रखते हुए न्यायोपार्जित अन्न का शुद्ध हृदय से दान दिया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। आहो, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा करते रहेंगे। देखो आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, देवता ऋषि गंधर्व देवदूत तुम्हारे दान को देखकर आकाश में उत्सव मना रहे हैं। ये देखो ब्रह्मलोक में विचरण करने वाले ब्रह्मर्षि विमान पर बैठकर तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ ब्राह्मण, अपने परिवार के साथ तुम दिव्य लोक में जाओ। पितृलोक में जितने तुम्हारे पितर हैं उन सबको तुमने तार दिया है, वो देखो वो पितर भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर ब्रह्मलोक जाओ। तुम्हारे ब्रह्मचर्य, तुम्हारे दान, तुम्हारी तपस्या और शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारा सारा कुल तर जाएगा। बड़ी श्रद्धा से तुमने तपस्या की है, देवता तुम्हारे पर प्रसन्न हैं। कितना संकट का समय था और तुमने कितने शुद्ध भाव से, तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने सारा का सारा सत्तू मुझे दान में दिया। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है, बहुत बढ़िया बात है। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है, उसके धार्मिक विचारों को खा जाती है, किंतु ऐसे समय में भी जिसके दान में रुचि हो उसके धर्म का ह्रास नहीं होता। तुमने स्त्री और पुत्र के स्नेह की उपेक्षा करके धर्म को श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास की कोई चिंता नहीं की है। मनुष्य के लिए सबसे पहले न्यायपूर्वक धन की प्राप्ति का उपाय जानना बड़ा सूक्ष्म होता है। धन तो बड़े बड़ों का मन डिगा देता है, उस धन को सत्पात्र की सेवा में अर्पण करना कितना बड़ा काम है। साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है, किंतु श्रद्धा का महत्व काल से भी बढ़कर होता है। श्रद्धापूर्वक तुमने दान दिया है, श्रद्धापूर्वक दान देने वाले मनुष्यों में यदि 1000 देने की शक्ति हो तो वे 100 का दान करे, 100 देने की शक्ति हो तो 10 का दान करे, और जिसके पास कुछ न हो वो अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा जल भी दान कर दे तो उन सब का फल बराबर माना जाता है। वस्तु का महत्व नहीं, श्रद्धा का महत्व है। हे ब्राह्मण, तुमको रंतिदेव की कथा का ज्ञान है? 49 दिन तक भूखे रहे, कुछ नहीं था खाने के लिए, और जो कुछ मिला उन्होंने बड़े प्रेम से जल तक का दान कर दिया। अन्यायपूर्वक पहले धन को कमाओ, फिर लोगों को दिखा दिखा करके धर्म के काम में दान पुण्य में लगाओ, और फिर चाहो कि उससे हमें बड़ा बड़ा फल मिल जाए, नहीं होगा। धर्म को प्रसन्नता नहीं होती, धर्म तो देवता है। न्यायोपार्जित थोड़े से धन का श्रद्धापूर्वक दान करने से धर्म संतुष्ट होता है। राजा नृग ने ब्राह्मणों को 1000 गौवें दान में दी, लेकिन एक गऊ का दान करने में थोड़ी सी भूल हो गई, जिस कारण उनको किरकाट की योनि में जाना पड़ा। उसी नर के पुत्र राजा शिवि श्रद्धापूर्वक अपने शरीर का मांस काट करके भी पुण्यात्माओं के लोक में आनंद में रहते हैं। न्यायपूर्वक एकत्रित किए हुए धन का दान करने से जो लाभ होता है वो बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों राजस्व यज्ञों के अनुष्ठान से नहीं होता। तुमने शेर भर सत्तू का दान करके अक्षय ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त की है, बहुत से अनगिनत अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अनगिनत अश्वमेध यज्ञ भी इस दान के बराबर नहीं है। तुम रजोगुण से रहित दिव्य ब्रह्मधाम में सुखपूर्वक रहो। ये देखो ब्राह्मण, ये दिव्य विमान उपस्थित है, मेरी ओर देखो, मैं कौन हूं? एकदम दिव्य रूप उसका, और आज पहचान नहीं पाया, मेरा नाम धर्म है, साक्षात धर्म। तुमने अपने शरीर का उद्धार कर दिया, संसार में तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा और कहीं भी तुम्हारा यश लुप्त तो होने लगेगा, मैं उसको वापस वैसे ही जागृत कर दूंगा। जैसे दीपक में घी कम होता है तो उसमें और घी डाल देने से फिर उसका प्रकाश बढ़ता है। नेवले ने कहा, सुना ब्राह्मणों, धर्म के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण देवता अपने स्त्री पुत्र पुत्र वधु के साथ विमान में बैठ गए और ब्रह्मलोक में चले गए। मैं भी वहीं बिल में बैठा हुआ था, इनकी बातें सुन रहा था। जब चले गए तो मैं बिल से बाहर निकला और जहां अतिथि ने भोजन किया था उस स्थान पर लोटपोट होने लगा। उस समय सत्तू की गंध सूंघने और वहां पर गिरे हुए जल के कीच के स्पर्श संपर्क होने से दिव्य पुष्पों को रौंदने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों में मुंह लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और ये आधा शरीर सोने का हो गया। उनके तप का ये महान प्रभाव आप लोगों के सामने है। बताओ, मेरी जाति का नेवला, आपने कभी ऐसा देखा है क्या? और कभी आप देख भी नहीं सकेंगे। जब मेरा आधा शरीर सोने का हो गया तो मैं फिक्र में पड़ गया कि सारा ही शरीर सोने का हो जाए, इसका क्या उपाय हो। मैं सुनता था कि वहां यज्ञ है, उस तपोवन में यज्ञ है, उस यज्ञ स्थान में यज्ञ है। मैं बहुत प्रसन्नता से दौड़ता था, खूब भ्रमण करता रहता था। वहां के पानी में इनमें लोटपोट होता था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में हमने सुना कि महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ न भूतो न भविष्यति, न तो हुआ न होगा, ऐसा यज्ञ होने वाला है। बड़ा शोरगुल हुआ, खूब लोग आने लगे, बड़ी बड़ी आशाएं लगी। जब से इन्होंने यज्ञ की तैयारियां की तब से मैं यहां आकर बिल में बैठा। रोज पंक्तियां लगती, भोजन करते, माल माल होते और मैं वहां जाता बड़ी आशा लगाए, पर मेरा शरीर तो सोने का नहीं हुआ। इससे मैंने हंसकर कहा कि ये यज्ञ ब्राह्मण के दिए हुए शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है, क्योंकि उस समय शेर भर सत्तू में से गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर स्वर्णमय हो गया और जो कुछ मैंने दाणा दो दाणा मुंह में लिया उसका ऐसा प्रभाव कि मैं आपके सामने धर्म की बातें करता हूं। नेवला का धर्म जाने, उस अन्न के कण को खाने मात्र से मेरी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई और आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। इतना इतना धन का लबादा लदते हुए भी आपके अंदर से लोभ नहीं गया, आपके अंदर से लोभ नहीं गया। इतना कहकर वह नेवला गायब हो गया। सब ब्राह्मण बड़े लज्जित हुए और अपने अपने घर को चले गए। ये सारा प्रसंग जन्मेजय मैंने तुमको सुना दिया। उस महान अश्वमेध यज्ञ में यह एक कम आश्चर्यजनक घटना नहीं है। उस यज्ञ के विषय में ऐसी घटना सुनकर किन किन को आश्चर्य नहीं हुआ। हजारों ऋषि यज्ञ न करके केवल तपस्या के बल से दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करना, ये महान यज्ञ है। प्राप्त वस्तु में संतोष रखना, ये महान यज्ञ है। शील बनाए रखना, महान यज्ञ है। सरलता का बर्ताव करना महान यज्ञ है। इंद्रियों का संयमन करना महान यज्ञ है। ब्रह्मचर्य का पालन करना महान यज्ञ है। सत्य भाषण करना ये कोई कम ये यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। जन्मेजय ने कहा, वैशंपायन जी, सच पूछा जाए, मेरे प्रपितामह युधिष्ठिर के इस यज्ञ के विषय में सुनने के बाद जब मैंने नेवले की बात सुनी है तो मैं बहुत आश्चर्य करता हूं। इतना आनंद का अनुभव हुआ है, अश्वमेध यज्ञ के विषय में सुनने पर इतना आनंद नहीं हुआ। एक शेर पर सत्तू के दान का इतना फल, ऐसा क्या हर एक यज्ञ में हो सकता है? आप कहते हैं न्यायतः प्राप्त होने वाले धन में जहां धन की बहुतता होगी, बहुतायत होगी, वहां न्याय नहीं होगा। न्याय के अनुसार धन बढ़ नहीं सकता है। धन का और अन्याय का संबंध है, धन का और न्याय का संबंध नहीं है। आप बताओ, क्या बिना धन के संग्रह के यज्ञों का अनुष्ठान हो सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं हो सकता है। तो बताओ, अब वे प्राचीन इतिहास की बातें बताएंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की जय। अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।
आनंद कंद भगवान की
जय।